اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آج پیج نمبر ہم پڑھیں گے، پیج نمبر 10. یہ 10 کے بالکل سامنے والے 11 پیج پہ ایک ڈائیگرام سا دیا گیا ہے، اس کو ذرا دیکھیں. میں اس کو پڑھنا شروع کرنے سے پیشتر ذرا اس ڈائیگرام پہ آپ کی توجہ دلا دوں. یہ دیکھیں، خواب اور بیداری اس کا عنوان ہے. اس کے بعد اوپر سے یہ ایک مستطیل سی بنائی ہے جس میں 6 دائرے بنائے گئے ہیں، بہت باریک باریک، اور وہ ہر دائرہ اپنی جگہ مکمل ہے. یہ 6 درجات جو ہیں یہ اصل میں 6 تنزلات ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد نیچے ایک ڈائیگرام ہے جس میں دکھایا گیا کہ وہمہ، وہ خیال، دونوں طرح خواب اور بیداری دو حصوں میں اس کو دکھایا گیا کہ وہی وہمہ خواب میں بھی خیال بنتا ہے، تصور بنتا ہے، اور پھر احساس جو ہے وہ بنتا ہے. اسی طرح یہی وہمہ بیداری میں خیال بنتا ہے، تصور بنتا ہے، اور احساس بنتا ہے. نوٹ کریں کہ خواب والے سیگمنٹ کو سٹریٹ لائن سے پر کیا گیا ہے، جبکہ بیداری والے سیگمنٹ کو یا سیکشن کو گراف بنا دیا گیا ہے. یعنی یہ پورا نظام جو ہے وہ یہ دکھایا گیا ہے کہ اطلاع آ رہی ہے، اور وہ وہمے کی صورت میں یہ دماغ کا، دو ہیمیسفیئرز بنے ہوئے ہیں اصل میں، اور یہ وہمہ جو ہے یہ دونوں صورتوں میں کمبائن ہے، یعنی دونوں کا یہ ایک پریشر ڈال رہا ہے. دیکھیں اس کا کونا جو ہے یہ اس کو دبا رہا ہے. اس پریشر کا نام ہے خیال. پھر جب آپ کا خیال، یعنی کہ آپ ہمیں خیال آتا ہے، تو وہ بن جاتا ہے تصور، یعنی تصویری صورت. پھر وہ تصور میں جب گہرائی پیدا ہوتی ہے، تو آگے یہ ساری بات ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح یہ تصور جو ہے وہ احساس بنتا ہے. اس سے نیچے ناظر، نظر، نظارہ اور منظور کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں. دیکھیں ناظر نظر کو استعمال کر رہا ہے، اور جس چیز کو وہ دیکھ رہا ہے وہ منظور ہے. تو ناظر اور منظور کے درمیان لائن لگائی گئی ہے، اور ناظر سے نظر تک لائن لگائی گئی ہے. نظارہ اصل میں نظر اور منظور کے درمیان جو چیز دکھ رہی ہے اس کو نظارہ کہا گیا. تو یہ ناظر جو ہے وہ نظر سے کام لے کے کسی چیز کو دیکھ رہا ہے، جس کو منظور کہتے ہیں. تو نظر جب منظور کو دیکھتی ہے تو درمیان میں نظارہ بن رہا ہے. یہ اس ڈائیگرام کے حوالے سے میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کے دو تین باتیں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ ہمیں اس کتاب میں اطلاعات روحانیت کے بارے میں، روحانیت کے میکانزم کے بارے میں، یہ تمام اطلاعات دی جائیں گی، دی جا رہی ہیں. ہم جب ان اطلاعات سے کیا کہتے ہیں آشنا ہو جائیں گے، روشناس ہوں گے، ہم ان کو جان لیں گے، ان کو اچھی طرح اپنے اندر اتار لیں گے، حافظے میں نقش کر لیں گے، یا جسے کہتے ہیں ذہن نشین کر لیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ کتاب ختم کر کے بھی آپ کو یہی سارا نظام سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. تو اب میں پیج نمبر 10 پہ اس کو پڑھنا شروع کرتا ہوں. کل ہم نے جو پڑھا کہ وہ علم حضوری اور علم حصولی کے حوالے سے مرشد کریم نے کیا ارشاد فرمایا، آج ہم اس کو آگے پڑھتے ہیں. یہ لاسٹ پیراگراف ہے. اب ہم اس بات کو ذرا اور وضاحت سے بیان کرتے ہیں. دنیا میں جو کچھ موجود ہے، یا آئندہ ہونے والا ہے یا گزر چکا ہے، وہ سب خیالات کے اوپر رواں دواں ہے. دوبارہ سن لیجئے، دنیا میں جو کچھ موجود ہے یا آئندہ ہونے والا ہے یا گزر چکا ہے، یعنی پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر سے ریلیٹڈ ہر چیز جو موجود تھی मौजूद है या आइंदा मौजूद होगी, सब का सब ख्यालात के ऊपर रवान दवा है, ख्यालात पे चल रहा है। ये जो ऊपर के छह दायरे हैं ये ख्यालात की रोएं हैं, यानी जो डायग्राम में दिखाया गया। अगर हमें किसी चीज के बारे में कोई इत्तला मिलती है, दोबारा तवज्जो से सुने कि अगर हमें किसी चीज के बारे में कोई इत्तला मिलती है बालफाजे दीगर, उस चीज का ख्याल आता है, तो वो चीज हमारे लिए मौजूद है। और अगर हमें अपने अंदर से किसी चीज के बारे में इत्तला नहीं मिलती या किसी चीज के बारे में ख्याल नहीं आता, अब ख्याल आना क्या हुआ, इत्तला मिलना। और इत्तला देखें क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है मुर्शिद करीम ने, कि किसी चीज को अंदर से इत्तला नहीं मिलती, अंदर से इत्तला का चक्कर है ये सारा। जब कोई आदमी मुसव्विर बनना चाहता है तो पहले उसके जहन में ख्याल आता है कि मुझे तस्वीर बनानी है। कोई आदमी बढ़ई बनना चाहता है तो उसके जहन में ख्याल आता है कि मुझे बढ़ई का काम करना है। अला हाजल कयास, दुनिया के हर इल्म की यही नौइयत है। पहले इस इल्म के बारे में हमारे अंदर ख्याल पैदा होता है और हम उस ख्याल के आने के बाद उस मखसूस फन या मखसूस इल्म को सीखने की तरफ मतवज्जो हो जाते हैं और हमें एक उस्ताद की तलाश होती है। उस्ताद सिर्फ इतना काम करता है कि हमारे ज़ौक व शौक के पेशे नजर हमारे अंदर काम करने वाली मखसूस सलाहियत को मुतहर्रक कर देता है। ये जो मिसालें दी गई बढ़ई की या मुसव्विर की, ये इल्मे हसूली के हवाले से। अब इसी तरह जब आपको ख्याल आया कि हमें रूहानियत सीखनी चाहिए तो हमने एक उस्ताद की तलाश की, अब उस्ताद बता रहा है कि वो उसका काम है कि वो हमारे ज़ौक व शौक के पेशे नज़र, अगर हमारे अंदर ज़ौक व शौक होगा तो वो हमारे अंदर काम करने वाली मखसूस सलाहियत को मुतहर्रक कर देंगे, और अगर वो सती होगा तो शायद वो तवज्जो ही ना दे। हजूर कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह लौह कलम में फरमाते हैं कि उस्ताद का काम सिर्फ इतना है कि वो आदमी के अंदर मौजूद सलाहियत को बेदार करने में मुआविन बन जाता है। हजूर कलंदर बाबा औलिया ने फरमाया कि उस्ताद का काम सिर्फ इतना है कि वो आदमी के अंदर मौजूद सलाहियत, यानी जो सलाहियतें उसके अंदर मौजूद हैं, खुफ्ता हैं, सोई हुई हैं, उनको बेदार करने में मुआविन बन जाता है। जिस तरह तमाम अलूम तमाम फनून की सलाहियतें इंसान के अंदर मौजूद हैं, उसी तरह रूहानी अलूम हासिल करने की सलाहियतें भी इंसान के अंदर मौजूद हैं। जब आदमी तस्वीर बनाना सीख लेता है तो उसका नाम मुसव्विर हो जाता है, और जब आदमी फर्नीचर बनाने में माहिर हो जाता है तो उसका नाम बढ़ई रख दिया जाता है। अगर कोई आदमी साइंसी एतबार से कोई चीज ईजाद कर लेता है तो वो साइंसदान कहलाता है। अगर शागिर्द उस्ताद की मदद से, उस्ताद की मदद से अपने अंदर रूहानी सलाहियतें बेदार कर लेता है तो उसका नाम रूहानी इंसान हो जाता है। लौह कलम में इसी रूहानी इंसान की सलाहियतों को मुतहर्रक, यानी तहरीक देकर उनको हरकत में लाने का और बेदार करने के तरीके बयान किए गए हैं। ये है लौह कलम की और छोर और असल बात। अब ख्वाब और बेदारी जिसको आपने वहां नक्शे में देखा, उसके हवाले से फरमाते हैं कि इल्मे हजूरी और इल्मे हसूली की मुख्तसर तारीफ के बाद ये नतीजा मुरतब होता है कि रूह को समझने, जानने और पहचानने के लिए अगर कोई मोतबर और हकीकी जरिया है तो इल्मे हजूरी है। इल्मे हसूली से रूह का सुराग नहीं मिलता। अब इल्मे हजूरी हकीकी और मोतबर जरिए, इल्मे हसूली रूह का सुराग नहीं देता। अगर कोई आदमी इल्मे हसूली के जरिए रूह को समझना चाहता है तो वो अकली और मंतकी दलीलों में उलझकर रास्ता भटक जाता है। ये जुमला नोट कर लीजिए, रूहानियत को इल्मे हसूली की तर्जों पे सीखने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए ये जुमले वार्निंग है। हर इंसान अपनी फिक्र के मुताबिक रूह के बारे में कयास आराइयां करता है। मसलन कोई कहता है कि इंसान पहले बंदर था, किसी ने कहा इंसान सूरज का बेटा है। कोई इंसान की तखलीक को मछली की तखलीक के साथ वाबस्ता करता है, और ज्यादा सूझबूझ के लोग जब उन्हें रूह के बारे में कोई हकीकी बात मालूम नहीं होती तो वो रूह से कत नजर करके मादी जिंदगी को ही सब कुछ समझ लेते हैं। मतलब यह है कि जिस बंदे ने भी इल्मे हसूली के जरिए रूह को समझना चाहा वो हकीकी और हतमी नतीजे तक नहीं पहुंचा। और जिस अल्लाह के बंदे ने इल्मे हजूरी के जरिए रूह तक रसाई हासिल की उसके अंदर से शक और वसवसे खत्म हो गए और ये बात उसका यकीन बन गई कि गोश्त पोस्त का जिस्म मफरूजा और फिक्शन के अलावा कुछ नहीं, असल चीज इस मफरूजा और फिक्शन को संभालने वाला जिस्म यानी रूह है। इससे कतई ताल्लुक, इसके कतई ताल्लुक से जिस्म की हरकत खत्म हो जाती है। अब इस वक्त हमारे सामने ये तजस्सुस है कि इंसान के हम इसको किस तरह जानते और पहचानते हैं, और फिर वाकया इसकी अपनी हैसियत क्या है। इस सवाल को बहुत तवज्जो से नोट करें कि इंसान क्या है, हम उसको किस तरह जानते और पहचानते हैं, हमारा बना हुआ सांचा क्या है, यानी और फिल वाक्या यानी असल में उसकी अपनी हैसियत क्या है। हम इंसान को जिस तरह जानते हैं वो ये है कि हड्डियों का एक ढांचा है, ढांचे के ऊपर रग पट्ठों और गोश्त की बनावट से एक तस्वीर बनी हुई है। इसको ज्यादा वाजे तौर पर इस तरह कहा जा सकता है कि हड्डियों के ढांचे के ऊपर रग पट्ठे एक किस्म की पट्टियां हैं जिन पट्टियों से हड्डियों को छुपाया गया। इन पट्टियों के ऊपर रुई रखी है और रुई के ऊपर प्लास्टर चढ़ा दिया गया। पट्टियां रग पट्ठे हैं, रुई गोश्त है और खाल प्लास्टर है। लेकिन इस जिस्म के अंदर अपनी कोई हरकत नहीं है, कोई और चीज है जो इसे हरकत में रखे हुए है। मसलन हम मट्टी का शेर बनाते हैं, इस शेर को ऐसी जगह रख देते हैं जहां गर्दो गुबार उड़ता रहता है और गर्दो गुबार शेर के ऊपर जम जाता है, उस मट्टी के शेर के ऊपर। एक आदमी जब शेर देखता है तो गर्दो गुबार का तज़करा नहीं करता, वो कहता है ये शेर है, यानी वो एक खिलौना सा है, उसके ऊपर गर्दो गुबार पड़ गया तो हम कहते हैं ये तो शेर है, हालांकि गर्दो गुबार नहीं दिख रहा हमें, हालांकि पड़ा। जिस तरह एक शेर के ऊपर गर्दो गुबार जमा होकर यकजान हो गया, इसी तरह रूह ने भी रोशनियों को यकजा जमा करके और उन रोशनियों के ताने बाने से रग पट्ठों गोश्त और खाल से एक सूरत बना ली है और उस सूरत का नाम जिस्म रख लिया गया। इसकी मिसाल हजूर खिलंदर बाबा वलिया रहमतुल्लाह अलैह इस तरह बयान फरमाते हैं कि जिस्म के ऊपर जब तक कमीज है, कमीज की हरकत जिस्म के ताबे है, और जब कमीज को जिस्म से अलग कर दिया जाता है तो कमीज की अपनी कोई हरकत नहीं होती। कमीज शलवार और टोपी को एक जगह इस तरह रख दिया जाए कि ये गुमान हो के कोई आदमी लेटा हुआ है और उसे ये कहा जाए कि वो हरकत करे, तो ये मुमकिन नहीं है। इसके बरक्स अगर कमीज जिस्म के ऊपर है तो जिस्म की हर हरकत के साथ अज खुद और गैर इख्तियारी तौर पर कमीज में हरकत वाक्या होती है। यही सूरत हाल इस मादी जिस्म की है, यानी गोश्त पोस्त का जिस्म रूह का लिबास है। ये बुनियादी नुक्ता है, हमें इसको अजबर करना है। हर वक्त अगर ये हमारे जहन पे ये ख्याल तारी हो जाए कि ये जिस्म रूह का लिबास है तो समझे काम आसान हो गया। हजूर फरमाते हैं जब तक ये लिबास रूह के ऊपर है, ये रूह के ऊपर पड़ा हुआ है, इसके अंदर हरकत है, और जब रूह इस लिबास को उतार देती है तो उसकी हैसियत ऐसी कमीज की हो जाती है जो कमीज जिस्म के ऊपर नहीं है। हमारा रोजमर्रा का मुशाहिदा है कि जब आदमी मर जाता है तो उसके अंदर कोई मुदाफियत बाकी नहीं रहती। मरने का मतलब यह है कि रूह ने लिबास को उतार कर इस तरह अलग कर दिया है कि अब रूह के लिए उस में कोई कशिश बाकी नहीं रही। लिबास का यह मामला सिर्फ आलम नासूत या आलम तखलीक तक ही महदूद नहीं है। रूह हर जोन में, हर मुकाम में और हर तनजल के वक्त अपना एक नया लिबास बनाती है और उस लिबास के जरिए अपनी हरकत और सकनात का इजहार करती है। यानी जिस्म जो है ये जब हट जाता है तो रूह रंगों के लिबास में आती है, रंगों के बाद रोशनियों के लिबास में, रोशनियों से ऊपर फिर नूर का लिबास, फिर उससे ऊपर तजल्लियात का लिबास, उससे ऊपर फिर सिफात का लिबास। ये इस तरह से जैसे यहां मादी दुनिया में आलम में नासूत कहते हैं इस मादी दुनिया को, आलम में तखलीक भी इसी को कहा है, जहां चीजें खल्त मल्त होकर मादी तौर पे सामने आती हैं उसको आलम में नासूत कहते हैं या आलम में तखलीक कहते हैं। हर मुकाम में और हर तनजल के वक्त, यानी रूह दर्जा बद दर्जा उतरती चली जाती है, और जो मैंने आपसे अर्ज किया कि ज़ात सिफात और उसके बाद तजल्लियात, तजल्लियात से फिर नूर, नूर से रोशनी, रोशनी से रंग और रंगों के बाद ये मादी जिस्म, ये मुकामात गिन लीजिए कितने बनते हैं। हर मुकाम में और हर तनज़ल के वक्त अपना एक नया लिबास बनाती है और उस लिबास के जरिए अपनी हरकत और सकनात का इजहार करती है। न सिर्फ ये कि अपनी हरकत और सकनात का लिबास के जरिए इजहार करती है बल्कि उस लिबास की हिफाजत भी करती है, उस लिबास को नशोनुमा भी देती है। कहीं ये लिबास ताफुन और सड़ांद से बनता है जैसे ये हमारा मादी जिस्म, कहीं ये लिबास रोशनियों के ताने बाने से बुना जाता है और फिर यही लिबास नूरानी तजल्लियात से भी वजूद में आता है। रूह जब लिबास को तखलीत यानी मैटर से बनाती है तो मादे की अपनी खसूसियात के तहत लिबास यानी जिस्म के ऊपर टाइम एंड स्पेस की पाबंदियां लाहक रहती हैं। यानी जब तक रूह मादी जिस्म को अपनाए रहती है इसके ऊपर टाइम एंड स्पेस की पाबंदियां गालिब रहती हैं। अगला उन्वान है कि रूह की तलाश। अब लिबास की सही हैसियत, यानी लिबास से मुराद गोश्त पोस का जिस्म, हमारे सामने उस वक्त आती है जब हम मर जाते हैं, यानी हमारे ऊपर मौत वाक्य हो जाती है। इस कानून के तहत मरने के बाद गोश्त पोश का जिस्म महज लिबास की सूरत अख्तियार कर लेता है। अब ये जरूरी है कि हम तलाश करें कि जिंदा रहने की हालत में क्या हमारे ऊपर ऐसी कोई हालत वाक्या होती है जो मौत से मिलती जुलती हो या मौत से करीब हो। अब ये हालत वक्ती तौर पर होती हो या कुछ तवील अरसे के लिए वाक्या होती हो, इसलिए कि जब तक हरकत मुसलसल और मतवातर ना हो उसको मिसाल नहीं बनाया जा सकता। अब जिंदगी के मराहिल में या जिंदगी के शब और रोज और माह और साल में जब हम मौत से मिलती जुलती हालत को तलाश करते हैं तो हमें एक हालत पर मजबूरन रुकना पड़ता है और मौत से मिलती जुलती ये हालत नींद है। बुजुर्गों का कहना है कि सोया और मरा बराबर है, फर्क इतना है कि नींद की हालत में रूह का अपने लिबास से रब्त बरकरार रहता है और रूह अपने लिबास की हिफाजत के लिए चौकन्ना और मुस्तैद रहती है, और मौत की हालत में रूह अपने लिबास से रिश्ता तोड़ लेती है, या यूं कहिए कि रूह लिबास उतार कर आगे बढ़ जाती है। नींद हमारी जिंदगी में एक ऐसा अमल है कि जिससे रूह की सलाहियतों का पता चलता है। नींद हमारी जिंदगी में एक ऐसा अमल है कि जिससे रूह की सलाहियतों का पता चलता है, यानी रूहानी सलाहियतों के लिए नींद के अंदर दाखिल होने के बाद की कैफियत को मास्टर करना जरूरी है। हम दो हालतों में जिंदगी गुजारते हैं। एक हालत यह है कि हमारी आंखें खुली हुई हैं, हमारा शऊर बेदार है, हम हर चीज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, हम हरकत में भी हैं। इस तरह हरकत में है कि रूह का लिबास भी हरकत में है, ये हालत बेदारी की है। बेदारी में हम यही तो करते हैं कि जब हमारी रूह हरकत करती है तो साथ में लिबास भी हरकत कर रहा है, इस हालत का नाम है बेदारी। अब जिंदगी की दूसरी हालत जिसको नींद कहा जाता है, उसमें हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, खुद को चलता फिरता देखते हैं, लेकिन रूह का लिबास यानी जिस्म हरकत में नहीं होता। रूह के लिबास से मुराद गोश्त पोश का जिस्म है। अब इस प्रोसेस से ये साबित हुआ कि रूह इस बात की पाबंद नहीं है कि गोश्त पोश के साथ ही हरकत करे। रूह गोश्त पोश के जिस्म के बगैर भी हरकत करती है, और गोश्त पोश के जिस्म के बगैर हरकत करने का नाम है ख्वाब। ये बात समझ लीजिए कि जब रूह गोश्त पोश्त के जिस्म के बगैर हरकत कर रही होती है तो उस हालत का नाम ख्वाब है। ख्वाब के बारे में मुख्तलिफ नजरियात हैं। कोई कहता है ख्वाब महज ख्यालात होते हैं, जिस किस्म के ख्यालात में आदमी दिन भर मसरूफ रहता है उसी किस्म की चीजें उसे ख्वाब में नजर आ जाती हैं। कोई कहता है कि ख्वाब नासूदा ख्वाहिशात का अक्स। जब कोई ख्वाहिश नासूदा रह जाती है और इसकी तकमील नहीं होती तो वो ख्वाहिश ख्वाब में पूरी हो जाती है। इसी तरह की बेशुमार बातें ख्वाब के बारे में मशहूर हैं। अब ये जो नासूदा ख्वाहिशात का अक्स है ना, ये जो मॉडर्न साइकोलॉजी के बाबा आदम माने जाते हैं सिगमंड फ्रायड, ये उनका कहना था, लेकिन हजूर मुर्शिद करीम क्या फरमा रहे हैं, इसी तरह की बेशुमार बातें ख्वाब के बारे में मशहूर हैं और हर शख्स ने अपनी फिक्र और इल्म के मुताबिक ख्वाब के बारे में भी कुछ ना कुछ कहा है। लेकिन इस बात से एक वाहिद फर्द भी इनकार नहीं कर सकता कि जिस तरह रूह गोश्त पोस्ट के जिस्म के साथ हरकत करती है उसी तरह रूह गोश्त पोस्त के जिस्म के बगैर भी मुतहरक रहती है। लेकिन ये नुक्ता जो है ये हमारे साइकोलॉजिस्ट को, साइंसदानों को, मुफक्करीन को नहीं मालूम। ये बात एक रूहानी बंदा बता रहा है। इसके अलावा अगर कोई शख्स ये एतराज करे कि ख्वाब देखना और ख्वाब में किए हुए अमाल और ख्वाब में की हुई हरकतों सकनात ख्याली हैं, तो उसकी तरदीद हो जाती है। और उसकी तरदीद इस तरह हो जाती है कि हर शख्स एक या दो या ज्यादा ख्वाब ऐसे जरूर देखता है कि ख्वाब देखने के बाद जब वो बेदार होता है तो ख्वाब में किए हुए अमाल का असर उसके ऊपर बाकी रहता है। उसकी एक बड़ी वाज़े मिसाल ख्वाब में किए हुए अमाल के नतीजे में गुस्ल का वाजिब हो जाना है। जिस तरह कोई आदमी बेदारी में जिनसी लज्जत हासिल करने के बाद नापाक हो जाता है और मजहबन उसके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है, इसी तरह ख्वाब में किए हुए इस अमल के बाद भी उसके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है और वो उस वक्त तक नमाज अदा नहीं कर सकता जब तक वो गुस्ल जनाबत से फारिग ना हो। ये भी देखा गया है कि ख्वाब में कोई डरावना मंजर नजरों के सामने आ गया, आदमी जब बेदार हुआ तो मंजर की दहशतनाकी उसके ऊपर पूरी तरह मुसल्लत होती है। जिस तरह किसी दहशतनाक वाक्य से बेदारी में दिल की हरकत तेज हो जाती है, इसी तरह ख्वाब में दहशतनाक चीज देखने से दिल की हरकत तेज हो जाती है। बेदारी में जिस तरह कोई खुशनुमा मंजर देखने के बाद आदमी के ऊपर मुसर्रत और शादमानी की कैफियत तारी हो जाती है और आदमी बेदार होने के बाद खुद को खुश और पुर मुसर्रत महसूस करता है, उसी तरह ख्वाब में खुशनुमा मनाजर देखने से वो खुश होता है। क्या मतलब हुआ? वापस आ जाएं, अगर आप उस नक्शे को ध्यान से देखें तो वही चीजें ये जो पेज नंबर 11 पे है कि ये एक तरफ ख्वाब है, वही ख्याल, वही तसव्वुर और वही एहसास बेदारी में भी है लेकिन वो टाइम एंड स्पेस की जकड़बंदियों में, ग्राफ में है, और दूसरी तरफ वो जरा हल्का है यानी टाइम एंड स्पेस की गिरफ्त उसके ऊपर कमजोर है या कम है, क्योंकि रूह का रूह मादी लिबास से नहीं अपनी रोशनियों के लिबास से काम ले रही है। ये बेदारी और ख्वाब के आमाल और वाकयात का अजमाली खाका है। ये चैप्टर मुकम्मल हो गया। इस चैप्टर में खलासा मैं जल्दी से अर्ज कर देता हूँ। इसमें दो बातें ख़ास तौर पे, एक तो इल्मे हसूली और इल्मे हजूरी की बात हजूर मुर्शिद करीम ने बताई, और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये बताई कि जिस्म लिबास है और रूह उसके अंदर बसने वाला असल इंसान है, और दूसरी बात ये बताई कि रूह का सुराग हमें नींद में की कैफियात और हरकत और सकनात से मिलता है। और जिस तरह से हम बेदारी में ख्याल को तसव्वुर और फिर उसे एहसास बनाते हैं, इसी तरह ख्वाब में भी वो ख्याल तसव्वुर से एहसास के दर्जे तक जाते हैं। यानी ख्याल, तसव्वुर और एहसास ये रूहानी हरकत है और रूह परफॉर्म कर रही होती है। कभी उसका डिस्प्ले बेदारी में होता है और कभी उसका डिस्प्ले हालत ख्वाब में होता है। Thank you very much. कल अगर जिंदगी रही तो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश। आप सबका शुक्र गुजार हूँ कि आप इतने शौक से, इतने प्यार से शामिल हो जाते हैं। अल्लाह खुश रखें।